તારીખ 31/12/1996 શ્રી સમયસર કલશ ટીકા શ્લોક 4 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું બાંધણીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 21
કલશ ટીકા ચોથા કલશ ટીકા बात जो चली वो संक्षेप में ऐसी है कि आसन भक्त जी अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तो कैसे अनुभव करते हैं
जी?
ये जिन वचन से रमनते, जिन वचन में जो रमते हैं, जिन वचन में रमते हैं, इसका मतलब कि जिन वचन में तो अपना शुद्धात्म स्वरूप को उपादेय बताया है, सर्वस्व रूप से सर्वथापने सर्व प्रकार से अपना जो शुद्ध सहजात्म स्वरूप है उसको उपाधि बताया है। वो अपने शुद्ध स्वरूप में जो लीन होकर के जमते हैं, रमते हैं, वो जीन वचन में रमन करते हैं, क्योंकि वचन तो पुद्गल है, पुद्गल का राग करने का यहां कथन नहीं है। जीन वचसी रमनते, मैंने पुद्गल में रमण करना, उद्गल का राग करना, ऐसा यहाँ विधान नहीं है। जीन वचन में शुद्धात्मा जो अपना स्वरूप है उसमें रमणता करने की बात है, उसमें लीन होने की बात है। तो उसमें जो लीन होते हैं वो इस जीन वचन में रमते हैं। अब कहते हैं कि जीन वचन तो दो प्रकार से चले हैं। कैसा है जीन वचन
जी?
कि उसमें तो दो नहीं की बात है, निश्चय की भी बात है, व्यवहार की भी बात है। और निश्चय और व्यवहार दोनों में ऊपर ऊपर से देखे तो विरोध भाषित होता है। तो कि नहीं, जिन वचन तो ऐसा है कि ये दोनों नय का विरोध मिटाने वाला है, क्योंकि दोनों का प्रयोजन एक है, दोनों का प्रयोजन विरुद्ध नहीं है। विषय विरोध है लेकिन प्रयोजन विरुद्ध नहीं है। एक दृष्टांत ले लें कि जिन वचन ऐसा कहता है कि तू एक शाश्वत आत्मा हो, कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं, आत्मा का जन्म मरण नहीं। और जीन वचन ऐसा भी कहता है कि तूने अनंता जन्म मरण किया, अनंत भवभ्रमण किया और अनंत बार जन्म मरण किया। तो एक वचन ऐसा कहता है कि तुम्हारा जन्म मरण होता ही नहीं, तो दूसरा जिन वचन कहता है कि तुम्हारा अनंत जन्म मरण हुआ। तो बात तो विरोध वाली हो गई कि नहीं हो गई? फिर भी दोनों वचन में कहने का अभिप्राय एक है, दोनों वचन से वो आत्मकल्याण का ही प्रयोजन सिद्ध हो। शाश्वत स्वरूप दिखाने में भी आत्मकल्याण है और भवभ्रमण दिखाने में भी आत्मकल्याण है। शाश्वत स्वरूप का आश्रय लेकर भी भवभ्रमण को छुड़ाना है और भवभ्रमण की बात करके भी भवभ्रमण को ही छुड़ाना है। परिभ्रमण की बात करके परिभ्रमण को छुड़ाने के हेतु से कहते हैं। प्रयोजन तो विरुद्ध में नहीं है, प्रयोजन तो अविरुद्ध है। ऐसे जिन वचन में प्रयोजन की बात मुख्य है, वचन शैली अनेक प्रकार के होने के बावजूद भी प्रयोजन एक सा है। शाम को घूमते वक्त चर्चा लिया था, एक व्यापारी है, उसका प्रयोजन क्या है? पैसा कमाने का। वो दूसरा कुछ नहीं समझता, पैसा कमाने को समझता है। तो माल लेने को जाएगा पैसा कमाने के लिए, माल बेचेगा दुकान पे पैसा कमाने के लिए। अब जब माल बेचेगा तो घर को घराग अच्छा आएगा तो बेचेगा, तो घराग के पीछे खर्च करेगा। अपना इकलौता बेटा के पीछे खर्च नहीं करता, उतना ग्राहक के पीछे खर्च करता है। बहुत अच्छा बढ़िया ग्राहक आया, बहुत माल लेने, रोकड़ा पैसा लेकर के क्या, लेकिन उसको ठहराने के लिए अच्छे होटल में ठहराया, उसके लिए गाड़ी भी भेज दी और उसको घुमाया फिराया खिलाया पिलाया। हाँ? शाम तक 2-5 हजार का खर्चा एक दिन में कर दिया। नुकसान किया कि मुनाफा किया? कि वो सब किया वो कमाने के लिए किया है। तो खर्च करता है वो भी कमाने के लिए, ऐसे व्यवहार ने व्यवहार की बात करता है तो भी आत्मशुद्धि के लिए, और शुद्धात्मा की बात करता है निश्चय ने तो भी आत्मशुद्धि के लिए। इसलिए विरुद्ध दिखे तो भी विरुद्ध नहीं है, और यही जीन वचन का आशय है। यहां जीन वचन के आशय को दिखाने के लिए आचार्य श्री ने एक श्लोक बनाया कि उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्याद पदांके। याद पद से मैंने कोई एक आशय से, कोई एक अपेक्षा से जिन वचन है वो दोनों नहीं का विरोध को मिटाने वाला होता है, विरोध करने वाला नहीं होता। ये सारा कलश का सारांश है। देखो राजमल जी अपनी भाषा में क्या कहते हैं कि दो पक्षपात परस्पर वैरभाव वाला दिखता है। एक पक्ष ऐसा है कि एक सत्व को मैंने, एक पदार्थ को द्रव्यार्थिक नय रूप द्रव्य रूप कहता है, वही सत्व को पर्यायार्थिक नय पर्याय रूप कहता है, इसलिए परस्पर विरोध तो है, जन्म मरण है और जन्म मरण नहीं है। है वो पर्याय की बात है, नहीं है वो द्रव्य की बात है। उसका मेटनशील है विरोध ध्वंसिनी, वय नय विरोध ध्वंसिनी, उसका मिटाने वाला है। भावार्थ ऐसा है कि दोनों नहीं तो विकल्प है। क्या है? आत्मा शुद्ध स्वरूप का जो बताने वाला नहीं है वो भी एक विकल्प है कि आत्मा है, पुत्रकाल शुद्ध है, वो भी एक विकल्प हुआ। और पर्याय में संसार है, शुद्धता नहीं है मलिनता है, वो भी एक विकल्प हुआ। दोनों में विकल्प है। शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव निर्विकल्प है, इसलिए शुद्ध जीव वस्तु का अनुभव होने पर दोनों नए विकल्प झूठे हैं। राजमल जी की शैली बहुत ऊंचे स्तर की है। क्या? बहुत ऊंचे स्तर की शैली है। वो तो कहते हैं कि निश्चय नहीं का विकल्प भी झूठा, व्यवहार नहीं का विकल्प झूठा उतना ही नहीं है, निश्चय नहीं का विकल्प भी झूठा। क्यों? कि अनुभव होने पर विकल्प रहते नहीं, बहुत बढ़िया बात है। फिर से दोनों में ही विकल्प है। शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव तो निर्विकल्प है, इसलिए जब शुद्ध जीव वस्तु का अनुभव होता है तब दोनों नए विकल्प झूठा मालूम पड़ता है। निर्विकल्प अनुभव करो अपना स्वरूप का। आत्मकल्याण का विकल्प तो एक और रहा, मैं परमात्मा हूं, वो विकल्प भी झूठा है। परमचंद जी देखो क्या कहते हैं राजमल जी, ऐसा क्यों कहा मालूम है कि उतना परमात्मा स्वरूप का विकल्प है ना, वो अनुभव नहीं होने देता, क्योंकि अनुभव निर्विकल्प है, और जब तक विकल्प चलता है अनुभव नहीं होता। इसलिए वो विकल्प का अनुभव नहीं करना चाहिए, किसी भी विकल्प का अनुभव नहीं करना चाहिए। इसमें चर्चा करेंगे, दो व्यक्ति की चर्चा करेंगे। एक तो जो सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, निर्विकल्प अनुभव तक पहुंचा नहीं, उनको दोनों विकल्प आएगा। एक विकल्प वही आएगा कि मैं परमात्मा हूं, एक विकल्प वो आएगा कि मुझे जन्म मरण नहीं चाहिए, मेरे को मुक्त होना है। यानी एक विकल्प ऐसा आएगा कि मैं परमात्मा हूं, एक विकल्प ऐसा आएगा कि मैं परमात्मा का मुझे अनुभव करना है, मुझे प्राप्त करना है, वो मैं कैसे करूं। वनी ने तो आत्मा कैसा है और इसका अनुभव किस विधि से होता है, ये दोनों विकल्प रहता है मुमुक्षु जीव को। मेरा स्वरूप कैसा कि ऐसा परमात्मा स्वरूप, और उसका अनुभव मैं कैसे करूं, किस विधि से करूं, यानी आत्मा की प्राप्ति मुझे कैसे हो। प्राप्ति को अनुभव को एक ही बात है। जब ये दोनों प्रकार का विकल्प चलता है तब विकल्प के साथ एकत्व हो जाता है। थोड़ी बात नहीं आई है अभी तक, नहीं चर्चा चल रही है अपने बीच में, ऐसी चर्चा कम चलती है। तो क्या है कि जब तक भेद ज्ञान की सफलता करके निर्विकल्प अनुभव तक नहीं पहुंचा मुमुक्षु, वहां तक उसको जो विकल्प आता है उसका स्वयं के रूप में अनुभव हो जाता है, उसको कहते हैं विकल्प का एकत्व। विकल्प का एकत्व माने क्या, कि जो विकल्प आया वैसा मैं हूं, ऐसा अनुभव हो गया। विकल्प आया ऐसा तो आत्मा है ही नहीं, अनुभव भी निर्विकल्प है और शुद्धात्मा भी निर्विकल्प है। एक भी प्रकार का विकल्प रूप आत्मा का स्वरूप नहीं है, फिर भी ऐसा अनुभव होना, कोई भी विकल्प रूप अनुभव होना अपना, ये अनुभव झूठा है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ऐसा नहीं। इसलिए कहा कि शुद्ध जीव वस्तु का अनुभव होने पर दोनों नए विकल्प झूठे हैं, जैसे स्वप्न झूठा मालूम पड़ता है वैसा। कह रहे जहां तक विकल्प चलता था विकल्प के रूप में मेरा अनुभव मुझे होता था, मैं तो ऐसा नहीं था, तो ये अनुभव झूठा हुआ। जो आगे वाला अनुभव है वो झूठा हो गया कि नहीं हो गया, स्व स्वानुभव सत्य है और स्वानुभव के सिवा जो भी विकल्प वाली दशा है उस रूप अनुभव होना वो मिथ्या अनुभव है, ये कहने का अभिप्राय है। और ज्ञानी तो जानते हैं उपजे मोह विकल्प थी समस्त आसा, अंतर्मुख अवलोकता विलय थता नहीं, दे फैसला कर दे तो जितना विकल्प उत्पन्न हुआ ना मोह और वही संसार, क्यों कि स्वरूप में से बाहर आ गया, विकल्प उठा कब, स्वरूप में से बाहर आया, तब बाहर आया इसका मतलब संसरण हो गया, स्वरूप से संसरण हो गया तो बाहर आया, बस उसी का नाम संसार है। अंतर्मुख अवलोकता जहां निर्विकल्प हुआ, विकल्प को विलय होने में कोई देर लगती नहीं है, खत्म। ऐसे दोनों को लागू पड़ता है, मुमुक्षु को भी लागू पड़ता है और ज्ञानी को भी। और कैसा है जीन वचन, स्याद पदांक है, स्यादवाद अर्थात अनेकांत, जिसका स्वरूप पीछे कहा है वही है चिन्ह जिसका ऐसा है। आगे जो बात कहना टीका करना चाहते हैं वो तो कहते हैं कि जीन वचन स्यादवाद चिन्ह वाला है, लक्षण वाला है। स्यादवाद मैंने कैसा, इसका स्वरूप हम कह रहे हैं बता रहे हैं। किस तरह से स्यादवाद है कि जो कोई वस्तु मात्र है आत्मा वो तो निर्भेद है, एक रूप वस्तु एक है, उसमें क्या भेद, वस्तु मैंने वस्तु, जैसे कपड़े का थान है तो एक थान है, वो एक थान है। अब कोई बताएगा कि ये 20 मीटर का है, ये थान कितना है 20 मीटर, तो 20 भेद हो गया इसका, तो क्या 20 टुकड़ा है इसमें, सलंग है, एक ही थान है। ऐसे आत्मा तो वस्तु एक, आत्मा एक है, निर्भेद है, उस वस्तु मात्र वचन द्वारा कहने से उसको बताने से जो कोई वचन बोलने में आता है वही पक्ष रूप है, पक्ष हो जाता है, जो भी वचन से कहते हैं उसका एक पक्ष हो जाता है। तो वस्तु तो जो है सो है, 20 मीटर बोलने पर थान कितना लंबा है वो समझाया, अगर ऐसा नहीं बोलता बोलते भेद नहीं करते तो समझ में नहीं आता थान मैंने क्या, 20 मीटर हो 40 मीटर भी हो कितना भी हो सकता है, तो भेद बताने से ही उसका सच्चा स्वरूप मालूम पड़ता है। पर भेद बताने से भेद मालूम पड़े, 20 टुकड़ा मालूम पड़े तो खोटा स्वरूप मालूम पड़ता है, सच्चा स्वरूप नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि 20 जगह उसकी कोई सांध नहीं है, एक एक मीटर पर इसकी कोई सांध नहीं है, फिर भी एक मीटर पूरा होता है बाद में दूसरा मीटर चालू होता है। तो अभेद वस्तु में भेद कहना वो व्यवहार है और भेद नहीं कहना वो निश्चय है, दोनों अपने अपने पक्ष को और प्रदर्शित करते हैं, दोनों वचन अपने अपने पक्ष को प्रदर्शित करते हैं, भेद वाला भेद को प्रदर्शित करते हैं, अभेद वाला अभेद को, वस्तु तो जैसी है वैसी है, न भेद वाली है न अभेद वाली है, ऐसा कह करके परमार्थ दर्शाया है। ऐसा कह करके भी परमार्थ दर्शाया है, कैसे कि तुम भेद के पक्ष में भी मत खड़े रहो, तुम अभेद के पक्ष में भी मत खड़े रहो, न भेद को खींचो न अभेद को खींचो। क्यों? कि खींचने से विकल्प जाएगा नहीं, खींचने से विकल्प, पक्षपात करने से विकल्प नहीं जाएगा। निर्विकल्प स्वरूप का निर्विकल्प अनुभव करो ना। क्यों पक्षपात में पड़ते हो, पक्षापक्षी क्यों करते हो, विवाद क्यों चलता है हमारे यहां पक्षापक्षी के कारण से। हम जो कहते हैं इसका पक्ष हम करेंगे, उससे विरुद्ध कहने वाले इसका पक्ष करेंगे, हो गया विवाद। ज्ञानी विवाद में नहीं पड़ते, ज्ञानी विवाद में नहीं पड़ते। मनासी दास ने गाया, वाद विवाद करे सो अंधा, सदगुरु कहे सहज का नंदा। मनासी दास आगरा में हुए ना, है आगरा वाले मनासी दास, 450 साल हो गई बनारसी दास को हुए, आगरा तो पुराना सिटी है। हंसी में
विषाद दसे,
विषाद दसे
विद्या में विवाद दसे,
विज्ञान में
विद्या,
विद्या में विवाद दसे, मतलब क्या है मालूम है? हंसी में खुशी हुआ, खुशी हुआ जिस बात में इसका प्रतिपक्ष आएगा तो तुम नाराज हो जाएगा, तो तेरी खुशी में ना खुशी गर्भित है। क्या? तेरी खुशी में ना खुशी गर्भित है, क्योंकि जिस बात पर तू खुशी है, तेरे यहां बेटा आया खुश हो गया, तो बेटा मरेगा भी, शाश्वत तो है नहीं कोई, है शादी आई तुम खुशी हो गया, तो शादी वाला एक तो मरेगा है, शादी भंग होगा कि नहीं होगा, एक तो रांडेगा, क्या रांडे रांडना ही कहता है ना हिंदी में, ना खुश हो जाएगा तो। और ये होने वाला है, ये बात बनने वाली है ही, भूलना मत। तो तेरी खुशी में ना खुशी पड़ी है, ऐसे विद्या में विवाद पड़ा है, मैंने अच्छी तरह पढ़ा है, मैं अच्छी तरह पढ़ा हूँ, लिखा जानता हूँ, समझता हूँ, बहुत समझता हूँ, बहुत पढ़ाई किया है, विवाद करेगा। क्योंकि ये पढ़ाई करने वाले को सूक्ष्म का अहम होता है, पर वो विवाद में किसी ले जाता है घिसट करके, ज्ञानी विवाद भी नहीं पढ़ते। गुरुदेव के पास एक सितंबर के साधु आए थे
जी।
अभी वो साधु मिले थे, बोले कि हमको आपके साथ चर्चा करनी है। क्या बोले? दोपहर को आए आराम के समय, गुरुदेव तो आराम जब जल्दी से कर लेते हैं, उठ जाते हैं जल्दी से, 20-25 मिनट थोड़ा आराम करके उठ जाते हैं, अपना साधे करते हैं दोपहर को। तो दोपहर को टाइम में वो आ गया, बोले कि हम आए हैं, ठीक है, क्यों आना हुआ आपका? आपसे थोड़ी चर्चा करनी है। गुरुदेव समझ गया कि वाद विवाद करने को आया है। गुरुदेव क्या बोले? हम किसी से चर्चा नहीं करते हैं। तो गर्म करने के लिए क्या बोला? कहाँ से करोगे, हार जाओगे ना, हमारे पास आप हार जाओगे, इसलिए हमारे से चर्चा करने की मना कर रहे हैं। बोले कि ठीक है, आप जैसा मानना ऐसा मान लीजिए, हम तो नहीं करेंगे, हमको करना नहीं, हम करते भी नहीं, नहीं वो बात फिर आगे चली थी बाद में। तो फिर वो फिर उसने तो चर्चा चालू कर दिया, देखो आप निमित्त को नहीं मानते, कुछ जवाब नहीं दिया। उसने चालू कर दिया चर्चा, आप निमित्त को नहीं मानते, लेकिन निमित्त बिना नहीं चलता, आपको भी नहीं चलता, मेरे को भी नहीं चलता। देखो मैंने भी चश्मा पहना है, आपने भी पहना है और इसने भी पहना है, पर तीन आदमी है, तीनों ने पहना है। और आप कहते कि निमित्त कुछ करता नहीं, निमित्त से काम होता नहीं, लेकिन चश्मा आपने क्यों पहना, हमने क्यों पहना, नहीं चलता निमित्त के बिना। इतनी चर्चा उसने बोल दिया तो गुरुदेव क्या बोले मानो, हो गई चर्चा। क्या बोले, चर्चा हो गई पूरी। कैसे हो गई, कि आपका जो समझ है, जितनी समझ है वो बाहर आ गई। तो हमको तो आपकी समझ से मतलब है कि आप कितना समझते हो, बात खत्म कर दिया, हो गई चर्चा, चलो आप जा सकते हैं। इस तरह से वाद विवाद में कभी जाते कोई समझने की बुद्धि से, समझने के लिए जिज्ञासा से कोई प्रश्न करते हैं तो समझाते हैं, लेकिन वाद विवाद करने वाले के साथ वो बैठते हैं, वाद विवाद करने के लिए नहीं बैठे, कभी नहीं बैठे। तो क्या कहा कि जो कुछ बोलने में आता है वही पक्ष रूप है, जो बोलने में आता है वही पक्ष हो जाता है। क्यों पक्ष हो जाता है, कि आत्मा अनेक धर्मात्मक है, बोलने में तो एक धर्म आएगा, उस धर्म का पक्ष हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए वो पक्ष रूप है। और कैसा है आसन भव्य जी, जिसका संसार का किनारा एकदम समीप आ गया है, वो जीव कैसा है कि स्वयं वांत मुहा, सहज रूप से वमन कर दिया है मिथ्यात्म यानी विपरीतपना, ऐसा है। विपरीतपना के साथ मिथ्यात्व अविनाभावी है, मिथ्यात्व होता है वहां विपरीतपना होता ही है। तो आसन भव्य जीव है मोक्ष मार्ग में, जिसका प्रवेश हो गया, अल्पकाल में मुक्त होने वाला है, उसने मिथ्यात्व और विपरीतपना को वॉमिट कर दिया है, वमन कर दिया है, था सही लेकिन निकाल दिया। भावार्थ ऐसा है, बहुत अच्छा भावार्थ लिखा है, टीका तो पूरी कर दी, अब भावार्थ बहुत बढ़िया लिखा है, कलश इसलिए पसंद किया है, जो मूल बात तो अभी आएगी। भावार्थ ऐसा है कि अनंत संसार जीवों को भ्रमते हुए, भ्रमण करते हुए जाता है, चल रहा है सब अनंत संसार, परिभ्रमण से अनंत संसार भ्रमण करते 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 सभी जीवों का, संसारियों का चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। उस संसारी जीवों में एक भव्य राशि है, एक अभव्य राशि है, मैंने दो जाति के जीव हैं, अनंत भव्य है, अनंत अभव्य है, राशि मैंने संख्या। उसमें अभव्य राशि जीव तीनों काल मोक्ष जाने के लिए अधिकारी नहीं है, जो अभव्य जीव है वो तीन काल में कभी मोक्ष जाने वाले नहीं, वो तो संसार में ही परिभ्रमण करते रहेंगे। हाँ, इसमें योग्यता दो प्रकार की है, मूल स्वरूप से एक है, ऐसे कोई योग्यता के कारण
कारण
अभव्यपना है, અભવ્ય પણા હે
અભવ્ય તો પણ કે જીવ તો સરખા જો છે એમ કે કશી કોઈ હોય તો આ રૂપ પાછું થાય
આ ખોડવો હે કે ઓ મોક્ષ કો નહીં સ્વીકાર કરતા
હા
ક્યા
મોક્ષ ના થાય એનો
મોક્ષ ક્યો નહીં હોતા તો મોક્ષ કા સ્વીકાર નહીં કરતા સ્વીકાર નહીં કરતા કોઈ કહેતા કે તુમકો મોક્ષ જાના હૈ કે નહીં જાના હૈ કે વો બાત છોડો
કૃપા તો સાચી
વાત છે જો સમજે વો થાય તો સમજે કોણ ભવ્ય હૈ વો
એટલે આજુ નો નિરાશ ના કર્યો ને
જ્ઞાન કરાતે ક્યા કરાતે સંસારી જીવો કા જ્ઞાન કરાતે દો જાતિ કે જીવ હૈ મૂળ જાતિ એક હૈ ફિર ભી ઉત્તર જાતિ મેં દો હૈ મૂળ જાતિ એક હૈ ઉત્તર જાતિ મેં દો જાતિ એક ભવ્ય એક અભવ્ય અગર એસા નહીં હોતા તો એ સંસાર એક દિન સમાપ્ત હો જાતા લેકિન ભગવાન સર્વજ્ઞ કે જિનેન્દ્ર પરમાત્મા કે જ્ઞાન મેં આયા હૈ કે એ સંસાર કભી ખતમ હોને વાલા હૈ નહીં તો ઉસકા કારણ ક્યા હૈ કે સંસાર મોક્ષ મેં જાને કે લીએ અધિકારી નહીં ભવ્ય જીવ મેં ભી કિતને જીવ મોક્ષ જાને કે યોગ્ય હૈ સબ નહીં જાયેંગે ભવ્ય વરના તો ક્યા હોગા સબ અભવ્ય રહે જાય સંસાર મેં એસા નહીં ભવ્ય અભવ્ય દોનો રહેંગે કિતને જાને કે અધિકારી હૈ કિતને જાને કે અધિકારી નહીં હૈ અબ ક્યા લેના ચલો ઇતની બાત इस शास्त्र से हमको जानने में मिली विषय तो केवल ज्ञान का है केवल ज्ञान में वो बात आई दिव्य ध्वनि में इसकी प्रसिद्धि हुई और ज्ञानियों ने परंपरा से वो बात को बताई हमको भी बताई अब हमको क्या प्रेरणा लेनी है કે હમકો તો મોક્ષ કા ધ્યેય હૈ પૂર્ણતા કા લક્ષ્ય હૈ હમ તો પૂર્ણતા કા લક્ષ્ય કરને વાલે હૈ મોક્ષ કા લક્ષ્ય કરને વાલે હૈ મોક્ષ મેં હમારી શ્રદ્ધા હૈ મોક્ષ મેં હમારી ઇસલિયે હમ તો ભવ્ય હૈ હમ અભવ્ય વો બાત ઉસમે સે લેના હૈ મુમુક્ષુતા કી ભૂમિકા મેં જ્ઞાની ક્યા કહેતે હૈ સુનિયે મુમુક્ષુ કી ભૂમિકા મેં ભવ્ય હું એસા વિશ્વાસ આતા હૈ સચ્ચે મુમુક્ષુ કો મેં ભવ્ય હું એસા વિશ્વાસ આતા હૈ અંદર સે ભણકાર આતા હૈ મોક્ષ કા મેરા મોક્ષ હો જાયેગા અવશ્ય મેરા મોક્ષ હોઈ જાયેગા એસા અંદર સે આતા હૈ જ્ઞાન દશા તો પીછે આયેગી પહેલે વો આ જાતા હૈ એક ઘટના એસી ઘટી થી સુનને લાયક હૈ સોનગઢ મેં ગુરુદેવ કા ખાના ખાને કે બાદ 15-20 મિનિટ ચક્કર લગાને કા રૂટીન થા તો ચક્કર લગા રહે થે ઇસમે તીન શ્વેતાંબર સાધુ આયે આને જાના નજદીક હૈ ને આને જાને કે હિસાબ સે દેખે કોઈ કોઈ મંદિર મંદિર હૈ ચલો ગાંધી સ્વામી કા આશ્રમ હૈ દેખે તો સહી કરીબ 10:30-11 બજે કા ટાઈમ મેં તો કેવું વ્યાખ્યાન વ્યાખ્યાન તો હોતા નહીં ચલો દેખ લેંગે મંદિર મંદિર ખુલા હોગા દેખ લેંગે સબ ક્યા હૈ આશ્રમ મેં પ્રસિદ્ધિ તો બહુ થઈ ગુરુદેવ તો સ્વાધ્યાય હોલ મેં આયે તો ગુરુદેવ ચક્કર લગાતે થે સ્વાધ્યાય હોલ आवकार दिया, आइए आइए। लेकिन वो सब देखते थे अध्याय, वहाँ वो समय सार जी की स्थापना की है शास्त्र की जी की, वो भी देखते थे, उनको बताया कि ये शास्त्र है, वो जन्म मरण का नाश करने का उसमें उपाय लिखा है, ऐसा है वैसा है, वो भी सुनते थे, थोड़ी बातचीत चली। गुरुदेव ने नाम पूछा अब लोगों का, क्या नाम है? तो बोले, एक बोले कि एक का नाम ज्ञान विजय है, दूसरे का नाम दर्शन विजय है, तीसरे का नाम चारित्र विजय है। ज्ञान विजय, दर्शन विजय और चारित्र, तो वो बढ़िया है, दर्शन ज्ञान चारित्र। फिर गुरुदेव ने एक टेस्ट किया, घटना वो घटी कि आप भव्य हैं कि अभव्य हैं, क्या पूछे? आप लोग भव्य हैं या अभव्य हैं? तो वो कैसे मालूम पड़े, क्या बोले वो? वो तो केवल ही जानते हैं, केवल ज्ञान गोचर है, हम थोड़े ना जान सकते हैं, वो तो केवली को मालूम करता है, हमको मालूम। गुरुदेव कुछ बोले ठीक है, बात को छोड़ दिया, बात को छोड़ दिया। अब इसमें क्या रहस्य क्या है? कि मुमुक्षु सच्चा होता है, उनको भी अंदर से भड़का आता है कि मैं भव्य हूँ, मेरा मोक्ष होने वाला है। ये तो दीक्षित साधु है, बोलते हैं कि हमको मालूम नहीं, हम भव्य है या हम अभव्य है, हमको मालूम नहीं है, ये हालत है। वो टेस्ट कर लिया कि कुछ बात नहीं थी, योग्यता का टेस्ट, ये पात्र में आता है, मोक्ष का विश्वास पात्रता में आ जाता है तो भव्यता का विश्वास आ जाता है। क्या कहते हैं? कितने एक जीव, भव्य जीव मोक्ष जाने के योग्य है, उनके मोक्ष पहुंचने का काल परिमाण है। जो जो भव्य जीव मोक्ष में जाएंगे उनका काल का नाप है, किसके पास है नाप, कि यह जीव इतने काल के बाद, इतने काल बीत जाने के बाद मोक्ष में जाएगा, ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है। कहाँ है? केवल ज्ञान में। सभी अनंत जीव की नोंद है, ये जीव इतने काल के बाद मोक्ष में चला जाएगा। मरीचि कुमार ने जब ऋषभदेव भगवान का विरोध किया, तब भी ऋषभदेव भगवान के ज्ञान में था कि ये जीव चतुर्थ मारा के पहले पहले, पूरा होने के बाद पहले पहले कुछ समय में मोक्ष चले जाएगा। पौने दो मास 20 दिन बाकी था पंचमारा शुरू होने में, भगवान का निर्वाण हो गया। वो बात केवल ज्ञान में, अनंत काल पहले भी सभी तीर्थंकरों को थी, सभी सिद्धों को थी, और आदिनाथ भगवान को भी आए कि एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद ये जीव भी तीर्थंकर होकर मोक्ष में जाएगा, ऐसी नंद केवल ज्ञान में होती है। यह जीव संसार में भमता भमता परिभ्रमण करते करते जब अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र रहता है, तब ही सम्यक्त्व उपजने के योग्य होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा संसार परिभ्रमण नहीं रहता, मिथ्यात्व हो जाए तो, इसलिए मैक्सिमम पीरियड लिया है अधिक से अधिक का, बाकी तो सम्यक दर्शन चालू रहे तो 3 से लेकर के 15 भाव में तो इसकी मुक्ति हो ही जाती है, उसमें तो अर्धपुद्गल परावर्तन भी नहीं लगता। लेकिन कोई मिथ्यात्व में आ जाता है और मिथ्या दृष्टि हो जाता है, तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन के पहले पहले उसको सम्यक्त्व की प्राप्त उसके मोक्ष हो ही जाता है। इसका नाम काल लब्धि कहने में आता है। इसका नाम क्या है?
काल
लब्धि। उसका काल है वो सीमित हो गया। यद्यपि सम्यक्त्व रूप जीव द्रव्य परिणमन करता है, अध्यार क्या बात है? अपने पुरुषार्थ से परिणमन तो खुद का है, तो परिणमन तो पुरुषार्थ बिना होता नहीं। तो यद्यपि सम्यक्त्व रूप जीव द्रव्य खुद परिणमन करता है, तथापि काल लब्धि बिना करोड़ उपाय भी यदि करने में आए तो भी जीव सम्यक्त्व रूप परिणमन करने योग्य नहीं है, ऐसा नियम काल लब्धि के पहले वो जो उपाय करेगा वो सही नहीं करेगा। जो उपाय करेगा वो सही नहीं करेगा। मुमुक्ष को ऐसा लेना चाहिए कि मेरा उपाय सही होना चाहिए और मिली काल लब्धि भी पक गई है। क्या लेना है? है? मेरा समय भी थोड़ा बाकी रहा है मोक्ष जाने में और मेरी काल लब्धि भी पक गई है, क्योंकि मेरा पुरुषार्थ चलता है, अमलीकरण में मैं आया। परिणमन तो जीव द्रव्य करता है, तो जीव द्रव्य कब परिणमन करता है? अमलीकरण होता है तब, तो मैं तो अमलीकरण में आया हूं। मोक्ष कैसा होना चाहिए? अमलीकरण के स्टेज वाला होना चाहिए, परिणमन के स्टेज वाला होना चाहिए, वाद विवाद के स्टेज वाला नहीं। पर को जानता है कि नहीं जानता है वो छोड़ो, परिणमन में आओ तुम, परिभ्रमण की वेदना का परिणमन में आओ, आओ वेदना परिभ्रमण को ले आओ। परिणमन में आया तो जीव द्रव्य खुद परिणमता है, बस जीव द्रव्य परिणमन करता है उसको विश्वास आ गया है, अब मैं संसार में परिभ्रमण करने वाला। देखिए बहुत मुद्दे की एक बात है परिणमन की वेदना में, परिभ्रमण की वेदना में, कि जिसको परिभ्रमण की यथार्थ वेदना आई उसको परिभ्रमण रहने वाला। क्यों? कि इसकी आत्मा ने अंतर से स्वभाव से परिभ्रमण का निषेध कर दिया, तब वेदना आई है। कब वेदना आई है? अंतर से परिभ्रमण का निषेध हो गया उसको, और वो उसका स्वभाव है। परिभ्रमण नहीं करना वो उसका स्वभाव है, परिभ्रमण करता है वो तो विभाव है। वो बात स्वभाव में से आई है, स्वभाव के गर्भ में से जन्म हुआ है परिभ्रमण की वेदना। कड़ा निषेध आया है उसको परिभ्रमण नहीं रहेगा। नहीं, उसमें पुरुषार्थ समेत नियति है, पुरुषार्थ भी है और पुरुषार्थ नियति का स्वीकार करता है। नियति का स्वीकार करना यथार्थ रूप से उसका नाम पुरुषार्थ है।
तो आपने नियति ने आधार देशीरी ने पुरुषार्थ
नहीं, 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 नहीं। नियति का अवलंबन लेना नहीं है, नियति जानने का विषय है। छेदो नहीं आत्मार्थ, पुरुषार्थ तो करना ही है, लेकिन कर्तृत्व भाव से पुरुषार्थ नहीं होता है। यह बात का संकेत राजमल जी ने किया है, करोड़ उपाय करो तो भी। इसका मतलब क्या हुआ? कि करोड़ उपाय करने भी सम्यक में नहीं होता, इसका मतलब कि कर्तृत्व रूप से करोड़ उपाय करें
सम्यक
पुरुषार्थ सहज होता है। पुरुषार्थ का स्वरूप सहज है, आत्मा सहजात्म स्वरूप है और इसका स्वाभाविक परिणमन भी सहज होता है। कर्तृत्व भाव से कोई परिणाम करना वही मिथ्यात्व है, इसके पर तो सारा कर्ता कर्म अधिकार लिखा है समीसार में। तो कर्तृत्व का समीसार ग्रंथ है ना ये, तो कर्तृत्व का निषेध किया है इसमें, क्या किया है, कर्तृत्व का निषेध कर दिया है।
कृपाणदेव लिखू से के काल पाके क्या रहे तो पुरुषार्थ कर क्या रहे,
तो पुरुषार्थ करने वाले को अपनी काल लब्धि पक गई है ऐसा विश्वास आ जाता है। दोनों सांस में होता है, पांच समवाय है ना, पांच समवाय में से दो समवाय है पुरुषार्थ और नियति या भवितव्य, तो दोनों साथ होता है, एक होवे और दूसरा नहीं होवे वो बनता नहीं, एक हो नियति होवे और पुरुषार्थ नहीं होवे नहीं बनता, पुरुषार्थ होवे और नियति का स्वीकार नहीं होवे नहीं बनता। इसलिए जानना कि सम्यक्त्व वस्तु यत्न साध्य नहीं सहज रूप है, यत्न मैंने कृत्रिम यत्न साध्य नहीं सहज रूप है, पुरुषार्थ का स्वरूप भी सहज है, देखो पुरुषार्थ का स्वरूप कैसे सहज है कि अपना स्वरूप साक्षात सिद्ध परमात्मा का जैसा स्वरूप है वैसा है, ऐसा है वो परोक्ष विचार का विषय नहीं है, ये प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। क्यों कि ऐसा स्वरूप सहज प्रत्यक्ष है, जो स्वरूप सहज प्रत्यक्ष है उसकी प्रत्यक्षता ज्ञान की प्रत्यक्षता में दिख जाए तो पुरुषार्थ जोर किए बिना रह सकता, सहज जोर करेगा इसी का नाम पुरुषार्थ, बाकी खींचाता नहीं करके जो करने में आए वो पुरुषार्थ का स्वरूप नहीं, वो पुरुषार्थ का स्वरूप नहीं है। खींचाता नहीं करने की बात, खींचाता नहीं कब करनी पड़ती है कि जबरदस्ती करनी है वहां से खींचाता नहीं करनी पड़ती है। देखिए मुमुक्षु को गुण के प्रति प्रेम होता है, किसके प्रति प्रेम होता है, गुण के प्रति प्रेम होता है, ये मुमुक्षु का सही लक्षण है। जिसका भी गुण दिखेगा ना उसको प्रेम आएगा। अब अपने आत्मा है वो अनंत गुण का निधान है, कितना प्रेम आएगा है? अनंत गुण का निधान के प्रति कितना प्रेम आएगा, और जहां प्रेम है वहां खिंचाता नहीं है कि प्रेम है वहां सहजता है, खिंचाता नहीं है वहां प्रेम नहीं, प्रेम है वहां खिंचाता नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ सहज होता है, स्वरूप का पुरुषार्थ सहज होता है, करना नहीं पड़ता, इसलिए कहते हैं कि सम्यक तो है यत्न साध्य नहीं सहज रूप है, यत्न मैंने कृत्रिम खिंचाता नहीं करने वाला यत्न से साध्य सम्यक होता नहीं, वरना क्या बोलते सम्यक तो ध्यान में होता है, तो कोई ऐसा करेगा हम तो ध्यान में बैठ जाएंगे, समय तो होगा अनुभव होगा तभी उठेगा, इसके पहले नहीं उठेगा, भाव नहीं उठेगा, खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं सोएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, हाँ नहीं हो सकता ऐसा सम्यक नहीं हो सकता। कोई बोले कि हम तो आपको एक महीने में करके दिखाएंगे, छह महीने में करके दिखाएंगे, तो बस हो गया मालूम पड़ गया तुम्हारा इस तरह से होता तो सहज होता है और वो प्रत्यक्ष देखने पर होता है, ये कहने का अभिप्राय है। थोड़ी और चर्चा करेंगे तक रखें।